Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक संत यात्रा पे निकले हुए थे, रात हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब किसी गृहस्थ के घर में मैं आश्रय ले लूं। वो एक गृहस्थ के घर में पहुंचे, गृहस्थ भी बड़ा प्रसन्न हुआ, उनकी खूब सेवा की और बैठ गया उनके पास ताकि कुछ वो जान सके। वो बैठे रहे, प्रश्न दर प्रश्न करते गए, संत जी उत्तर देते रहे और यूं पूरी रात निकल गई। कई बार वाद विवाद भी हुआ ताकि बातें स्पष्ट हो सके। अब जब संत जी सुबह जाने लगे तो गृहस्थ ने कहा कि कल की रात बहुत अच्छी बीती महाराज, आपका शुक्रिया। महाराज ने कहा, कल की रात अच्छी नहीं बीते, बहुत खराब बीते। गृहस्थ ने कहा, वो कैसे? हमने तो परमात्मा के बारे में चर्चा की, बहुत सारे प्रश्न मैंने किए, आपने उत्तर दिए। संत जी ने कहा कि तुम ये सोच रहे थे कि मैं कैसे अच्छे से अच्छा प्रश्न करूं, और मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे अच्छे से अच्छा इसका उत्तर दूं। और कई बार वाद विवाद में भी बहुत सारा समय हमारा जाया गया। मेरे विचार से इससे अच्छा ये था कि हम उस ईश्वर का ध्यान करते तो सारी रात हमारी सफल होती, वाद विवाद से तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि जिज्ञासावश यदि हम कुछ पूछते हैं वो तो बहुत सार्थक होता है कि हम सत्य की ओर बढ़ने के लिए जानना चाहते हैं कुछ, लेकिन जब वो एक वाद विवाद का रूप ले लेता है तो वो समय को ही नष्ट करता है या व्यर्थ चला जाता है समय। इससे बेहतर ये हो कि हम अध्यात्म को अपनी अनुभूति के माध्यम से समझने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि ये चूंकि सूक्ष्म विषय है अध्यात्म, इसीलिए इसे तर्क वितर्क से, वाद विवाद से नहीं समझा जा सकता। बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनके आधार पे भी कई बार हम कुछ चीजों को कसौटी पे कसने की कोशिश करते हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। इसीलिए योग या तप की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म को समझने के लिए, परम सत्य को समझने के लिए हमें वाद विवाद की नहीं, प्रश्नों की नहीं, लेकिन साधना की आवश्यकता होती है ताकि हम उसे अनुभव कर सकें। जो सूक्ष्म है उसके लिए भी शायद हमें अपनी स्थिति को सूक्ष्म बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन आप सब वाद विवाद नहीं करते, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप अपने सुंदर और सार्थक प्रश्न हम तक प्रेषित करते रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज पुनः मैं भ्राता जी के सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आइए पहले उनका हम अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
शुक्रिया।
भ्राता जी, कई बार हम जिज्ञासावश प्रश्न करते हैं लेकिन कई बार ये वाद विवाद का रूप ले लेता है।
कई लोग अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहते हैं, लेकिन सबको ये जानना चाहिए, साइंस इज नेवर परफेक्ट, साइंस इज ए सर्च, रिसर्च, वो एक खोज है। आज जो चीज सत्य है वो कल दूसरा वैज्ञानिक आके असत्य सिद्ध कर सकता है। साइंस इज नेवर परफेक्ट, और स्पिरिचुअलिटी जो परमात्म ज्ञान है वो परम सत्य है। तो एक इम्परफेक्ट चीज के द्वारा परम सत्य को सिद्ध करना बिल्कुल गलत, बल्कि इस परम सत्य के आधार से विज्ञान को सिद्ध किया जाएगा। देखिए, विज्ञान एक खोज, और खोज भी किसकी? प्रकृति की खोज है, भौतिक चीजों की खोज है। प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, विज्ञान कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, विज्ञान केवल वो जानने की कोशिश कर रहा है जो इस प्रकृति में हो रहा है। इसलिए कभी भी इस परम सत्य को विज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा सिद्ध नहीं करना चाहिए, ये गलती है मनुष्य की। हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एल एस माथुर, जो ऑब्जर्वेटरी भारत में है, मौसम विभाग की उनके डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, बहुत समय से उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया था, पहले बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स की बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, सिलेबस जो हैं। उन्होंने हमें ये बात बताई, हम छोटे थे लेकिन हम विज्ञान के स्टूडेंट थे तो हमें इस बात की समझ थी कि विज्ञान के द्वारा अध्यात्म को सिद्ध नहीं किया जाएगा, अध्यात्म के द्वारा विज्ञान को, क्योंकि ये सूक्ष्म बात है। फिर हम ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा समझ पाए कि अध्यात्म ही बीज है विज्ञान का, ये परम सत्य। दूसरी बात
जी,
मनुष्य के मन में प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो कहें वो मानता चले, वो जड़ नहीं है। एक बात जो बहुत सूक्ष्म है, बड़ी गुह्य है और जानने योग्य है कि मनुष्य का जो ब्रेन है उसमें अनंत ज्ञान और अनंत शक्तियां समाहित हैं, लेकिन उसके ऊपर लेयर्स बहुत हैं। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो ये लेयर्स हटती जाती हैं, जिसको हम कहते हैं हम अपनी बुद्धि को क्लीन करते जाते हैं, प्योरीफाई करते जाते हैं, और इस प्योरीफाइड बुद्धि में वो सद विवेक जागृत होने लगता है। इसलिए बहुतों को ये अनुभव है कि अनेक प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने अपनी कुछ मान्यताएं बनाई हुई हैं, उन मान्यताओं के आधार से ईश्वरीय ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो वो मान्यताएं उनके मार्ग में बाधक हैं, और किसी मनुष्य की कोई भी मान्यता संपूर्ण सत्य नहीं हो सकती। संपूर्ण सत्य तो केवल परमात्म ज्ञान है, परमात्मा है, जो परफेक्ट है, जो ट्रुथ है, वही आकर सत्य का रहस्य उद्घाटन करते हैं। इसलिए जो ये ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, मैं बचपन से ही दर्शनों का अध्ययन करता था। इंडिया में 6 फिलोसॉफिकल बुक्स हैं, 6 दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब दर्शन हैं। तो उसमें आत्मा के बारे में बहुत चर्चाएं होती थी। हम पढ़ते थे, कुछ समझ में तो आता नहीं था। बाबा ने आकर सिंपल बात बता दी, तुम आत्मा हो। उसमें अनेक व्याख्याएं थी और फाइनली भी ये पता नहीं चलता था तुम हो कौन। और बाबा ने आकर कहा ये शरीर तुम नहीं हो, तुम चेतनात्मा हो, तुम यहाँ हो। तो जो ट्रुथ है वो सिंपल भी होता है।
बिल्कुल बिल्कुल दादा जी, एक चीज है, कई बार व्यक्ति इस वाद विवाद को तो खैर एक तरफ रखें, लेकिन इस खोज में कि सत्य क्या है, जैसे नहीं बहुत सारे सत्य हो गए हैं, उलझन वाली बात। चलिए विज्ञान एक अपने स्तर की बात है, अलग है, लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो बहुत सारे स्थानों पे कि हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, बहुत सारे हो गए हैं ये सत्य कहने वाले, तो व्यक्ति के मन में एक शंका उठना कि यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, ये यहाँ जाऊं, ये वाली बात आ ही जाती है। क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कसौटी व्यक्ति अपने सामने रखे कि उसे धोखा ना मिले?
किसी व्यक्ति को बीमारी होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवाई देता है, मान लो 5-7 दिन दवाई खाने के बाद कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, बुखार तेज होता जा रहा है, तो जरूर डॉक्टर भी समझेगा कि कुछ और जांच होनी चाहिए, गड़बड़ कहीं और है। और जब उसको ठीक दवाई मिल जाएगी तो पहले ही दिन से वो ठीक होने लगेगा। हर बीमारी में यही होता है ना, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, अगर ठीक सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए तो पहले ही दिन से डॉक्टर को और पेशेंट को, दोनों को उम्मीद बंधेगी कि हाँ बस इम्प्रूवमेंट हुआ कि हुआ। ऐसे ही अध्यात्म आत्मा को, मन बुद्धि को प्योरीफाई करने के लिए है, उसकी सत्य की खोज को समाप्त करने के लिए है। देखिए बहुत सूक्ष्म चीज, जब किसी मनुष्य को सत्य मिल जाता है तो उसके सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं। प्यासे को पानी मिल गया, प्यास शांत हुई। वो ये नहीं कहेगा कि और पिलाते जाओ। तो जो परम सत्य है उसके प्राप्त होते ही मनुष्य को यह आभास होगा कि उसकी सभी क्वारीज, उसके सभी क्वेश्चंस, उसकी सभी जिज्ञासाएं शांत हो गई। एक आंतरिक संतोष, एक इनर गुड फीलिंग उसको होने लगती है। और दूसरी चीज जो मैंने कही, प्योरिफिकेशन होगा, काम क्रोध आदि विकारों पर विजय होने लगेगी। इवन जो ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, यदि वो अपने अहंकार को जीत नहीं पाए हैं तो उन्हें समझ लेना होगा कि सत्य से अभी वो दूर हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। शंकराचार्य इस धरा पर आए, बौद्ध धर्म चारों ओर फैला हुआ था, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, एक ही एक है। और इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अनेक तत्कालीन विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। पहले हराया पंडित मंडन मिश्र को, जो तत्कालीन सबसे बड़े विद्वान थे भारत में। उनके हारते ही अब अद्वैतवाद फेमस होने लगा, एक ही एक है, दूसरा कुछ नहीं है। न प्रकृति है, न ये संसार है, न आत्मा है, केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म। सबने उसको माना, बौद्ध नेताएं भी हार मान गए और बौद्ध धर्म भारत से लगभग समाप्त हुआ। चला उसका बहुत कुछ, उसने शिवालयों की स्थापना की, बहुत बड़ा कार्य किया, नो डाउट वो प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। लेकिन रामानुजाचार्य आए। अब देखिए, उस टाइम माना गया था कि उनका सिद्धांत ही परम सत्य है, उन्होंने उन सिद्धांतों को गलत सिद्ध कर दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया, अपने गुरु को ही हरा दिया। तो लोगों ने अब ये माना कि नहीं, ये परम सत्य है। फिर तीसरे आचार्य आए, उन्होंने अद्वैतवाद में कुछ और संशोधन किया, चौथे आए, पांचवे आए, पांचों ने थोड़ा थोड़ा संशोधन किया,
मतलब परिवर्तन
होता गया। लेकिन इसके बाद भी लोगों की खोज बनी रही। स्वामी दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने त्रैतवाद शुरू किया, लगा कि एक बहुत सुंदर बात, एक सुलझा हुआ दर्शन। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश लिखने के बाद लास्ट में उन्होंने कह दिया कि ये ना मानना, मैं जो कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य है, हो सकता है मेरे से बड़ा विद्वान आगे चलकर कोई आ जाए और तुम्हें सत्य कहे तो तुम्हें उसकी बात स्वीकार करनी होगी। तो जो समझदार आर्य समाजी हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सत्य और कुछ रह गया ना, बाकी रह गया जानने की जिज्ञासा है। माना अभी सत्य कुछ और भी है। हम लोग, मैं नहीं, लाखों लोग ब्रह्मा कुमारी में आए, ईश्वरीय ज्ञान लिया, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मिला, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला, स्वर्ग नरक का ज्ञान मिला, इस संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, चित शांत हो गया, अंतरात्मा ने मान लिया कि यही परम सत्य है, विकार छूटने लगे, मन शांत होने लगा, प्रभु मिलन होने लगा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुए परम सत्य के। अब यहाँ डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चन आंसर जानने के लिए तो करना ही पड़ता है, पर जो एक वाद विवाद जिसको
कौन सत्य है, कौन
कुतर्क कहते हैं, कुतर्क,
उसकी आवश्यकता है। तथा जी, एक प्रश्न इसमें ये मैं पूछना चाहूंगा, आप पाए लाखों लोग हैं जिन्होंने इसकी अनुभूति की कि अनुभव हुआ कि हाँ, सत्य ज्ञान यही है, मेरा मन शांत हो गया, मैं प्यूरिफाई होने लगा, या ईश्वर की समीपता की अनुभूति होने लगी, मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। तो मुझे तो ये अनुभूति हुई, लेकिन हो सकता है लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें ऐसी अनुभूति फिर क्यों नहीं हो रही है, यदि सत्य यहाँ है तो।
बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन पेशेंट यदि दवाई खाए नहीं तो उसको कोई इफेक्ट उसका नजर नहीं आएगा, भले ही दवाई परफेक्ट हो। ऐसे यहाँ राजयोग का मार्ग दिखाया जा रहा है, जो व्यक्ति उसको कर लेता है। देखिए, हमारे यहाँ शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अभी भी हो रहा है, अब रोड में ही हो रहा है, 500 लोगों ने अटेंड किया उसको। उनमें 3 दिन का वो शिविर होगा, 3 दिन में उनमें से बहुतों को सुंदर अनुभूति हो जाएगी और वो उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। जिनको अनुभूति नहीं होगी उसका एक ही कारण होगा कि उनका मन बहुत विचलित है, वो उन चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं जो योग अभ्यास की सफलता के लिए करना चाहिए। जो कर रहे हैं उन्हें तत्काल अनुभूति प्रारंभ होती है। और अगर आप वहां जाकर देखें, 500 लोग शिविर कर रहे हैं, उनमें से कम 400 आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि आज सच्ची शांति की अनुभूति हुई, आज पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरा परमपिता कौन है। तो सत्य की अनुभूति होते ही बस मनुष्य उस मार्ग को स्वीकार कर लेता है।
बिल्कुल, मतलब कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना होगा, जैसे डॉक्टर ये दवा देने के साथ बता देते हैं कि भाई परहेज ये है, ये करोगे तो तुमको फायदा होगा, और यदि हम परहेज नहीं कर रहे हैं तो शायद वो जो अनुभूति है वो नहीं।
मान लो एक डॉक्टर ने एक बहुत हैवी डोज दे दिया और ये कहा कि कुछ खाने के बाद ही लेना, लेकिन पेशेंट अब उतावला है कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, और वो खाली पेट उसको खा लेता है और वो कर जाता है रिएक्शन। अब वो डॉक्टर को गाली दे रहा है, वो कुछ कुछ कह रहा है, कैसा डॉक्टर है, इसको अकल नहीं है, सारा मेरा खराब कर दिया, मैं तो पहले ही अच्छा था। अरे भाई, तुम उसको तो फॉलो करते कि चलो थोड़ा सा ही खा लेते, 2 बिस्कुट खा लेते, ठीक हो जाता।
बिल्कुल, बता जी, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपके अनुभव में भी एक बात आई थी कि आप आए, आपने कुछ पढ़ा और तत्काल आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता कि वो आए यहाँ विश्वविद्यालय में, उन्होंने ज्ञान सुना उनका भी यदि चित भगवान से वैसा ही लग जाए जैसा आपका लगा था, तो वो भी शायद विद्यालय से जुड़ जाते, ऐसा क्यों नहीं?
इसका बहुत एक सुंदर उत्तर है। पूर्व जन्मों से मनुष्य क्या क्या करता आया है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको सत्य की खोज होती है, जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने भगवान से भक्ति में बहुत सारे वायदे किए हुए थे, और कुछ ऐसी चीजें थी उनके अंदर जिसको हम परहेज कहते हैं ना, वो चलते आ रहे थे, प्योरिटी के संस्कार थे उनके अंदर, सबके लिए एक बहुत सुंदर भावनाएं थी, उन्होंने कर्म भी बहुत पुण्य के किए थे। ऐसी आत्माएं जैसे ही ईश्वरीय ज्ञान के टच में आएंगी, उन्हें लगेगा दिस इज द ट्रुथ। ये बहुतों के साथ हुआ है, रोज मिलते हैं हमें ऐसे लोग, बहुत मिलते हैं, कहते हैं बस हम तो आए और जैसे ही चित्र देखे, अभी कुछ समझा नहीं, चित्र देखे सेंटर में, लगा के हम आ गए जहाँ हमें आना चाहिए था। और जिन लोगों को ये अनुभूति नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं 7 दिन कोर्स करने के बाद कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 20-25 दिन डिस्कशन करने के बाद वो कुछ चीज़ें समझते हैं। इस सब के पीछे पूर्व जन्मों की उनकी धारणाएं क्या चली आ रही हैं लंबे काल से, और इस जन्म में भी, जैसे मैंने कहा कई ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी विचारधाराएं स्ट्रोंगली बनाई होती हैं, और वो ये मान के यहाँ आते हैं हम सत्य हैं और ये जो ब्रह्मा कुमारियां बताएंगी इन्हें हम झूठ सिद्ध करके आएंगे, तुम गलत हो। तो उनकी जो अपनी वो मान्यताएं हैं वो उनको कुछ भी आगे बढ़ने नहीं देती,
वाद विवाद में शायद उलझा देते हैं,
वो ये सोचते हैं हम इन्हें हराएं, और जहाँ हराने और जिताने की भावना रहती है वहाँ सत्य नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल दादा जी, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं मुझे लगता है, जो सोचते हैं कि यदि हमें कुछ साक्षात्कार हो जाए, हमें कुछ डिवाइन फीलिंग हो जाए, उसके बाद हम इस चीज को स्वीकार कर लेंगे। परमात्मा के पास तो ये शक्ति है कि उन्हें ये करा दे, ठीक है कर्मों के प्रारब्ध की बात आपने कही कि अच्छे कर्म करके आए हैं तो ये हो जाता है, लेकिन परमात्मा के पास भी तो ये शक्ति है कि उन्हें ये ऐसा अनुभव करा सकते हैं, वो ये क्यों नहीं करा देते?
लेकिन परमात्मा अगर सबको ये अनुभव कराने लगे, वो जादूगर बन जाए, तो सभी उनके सत्य मार्ग पे चल के बहुत सुंदर संसार की यहाँ रचना हो जाए।
तो हम यही तो लेकिन चाहते हैं।
सब चाहते तो यही हैं, लेकिन इसके पीछे जिसको साक्षात्कार कराना चाहते हैं उसकी मेंटेलिटी क्या है, क्या वो उसके योग्य है भी या नहीं, ये भी तो देखना पड़ता है ना। कोई भी व्यक्ति, हम किसी को कुछ देने भी जा रहे हैं, हम उसकी योग्यता को अवश्य देखते हैं, पात्र अवश्य देखते हैं। हमारे पास कोई बहुत सुंदर चीज हो, हम बेगर को तो नहीं दे देते, वो किसी योग्य व्यक्ति को, हमारा कोई योग्य बच्चा है। बच्चे भी 4 हैं और उनमें से भी एक बिल्कुल अच्छी चीज हम किसी योग्य बच्चे को ही देते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा भी साक्षात्कार करा सकते हैं, उनके पास ये शक्ति है। उदाहरण में दे दूं, हमारे पास भी लोग आते हैं, क्या कहते हैं, अगर शिव बाबा है वो मुझे साक्षात्कार करा दे, मैं अपनी करोड़ों की संपत्ति आपको अर्पित कर दूं। भगवान क्या कहेंगे, नहीं चाहिए, तुम ही रखो भाई। ये जो सौदाबाजी है इससे साक्षात्कार हो ये संभव नहीं। किसकी भावनाएं कितनी शुद्ध हैं, किसका चित्त कितना शुद्ध है, और मान लो कोई दुर्गा देवी का साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसने कितने समय से निष्काम भाव से सच्चे मन से उनकी आराधना की है, इसके भी तो मार्च है ना। मान लो हनुमान का कोई भक्ति नहीं है, उन्हें हनुमान के बारे में सुना है और वो भी सोचता है मुझे हनुमान के दर्शन हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा, और भगवान उसको करा देता है, वो कहेगा ठीक है हो गया, हनुमान हनुमान है, हम तो वैसे ही भगत ही ठीक है, आगे बात बढ़ेगी नहीं। इसलिए बहुत प्योर फीलिंग्स, बहुत अच्छी भावनाएं और पिछले पूर्व जन्मों का सुंदर इफेक्ट, ये सब जब मिल जाता है तब वो साक्षात्कार भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है।
दादा जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फोन कॉल्स या मेल्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम चलेंगे तो सही इस मार्ग पे, लेकिन हम जो अब तक करते आए हैं, एक सामाजिक बंधन है, एक परंपरा है, उन सब चीजों का भी निर्वाह हमें करना पड़ता है, तो फिर कैसे पूरी तरह से आया या समझा जा सकता है? तो एक बंधन वाली जो बात है, सामाजिक बंधन वाली बात, तो इसमें क्या आप सुझाव देंगे उन्हें?
नरसिंह मेहता बहुत धनवान व्यक्ति थे, प्रभु प्रेम में मग्न होने के बाद अपना सर्वस्व छोड़ दिया, मीरा रानी थी, श्री कृष्ण के प्यार में मगन हो गई और बस लगन लगी, वही मेरा पति है, वही मेरा सब कुछ है, महल छोड़कर चल दी अकेली। तो जिसको कुछ पाना है उसको कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। अगर मनुष्य इन छोटे बंधनों में अटक कर रह जाता है तो वो सर्वोच्च प्राप्ति का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। ये बहुत छोटी चीजें हैं, समाज किसी को कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं करता। ईश्वरीय मार्ग पे चलने वालों को तो समाज और बंधन डालता है। कहानियां हैं हजारों, जो ईश्वरीय मार्ग पे चला समाज ने उसको बहुत पीड़ित किया, बाद में पूजा की। साईं बाबा को देख लीजिए, मैं तो हंसा करता हूँ। गया मैं भी मंदिर में, हमारे पहचान वाले लोग हैं वहाँ, बहुत सोने का बना दिया है छत्र ताज सब कुछ सिंहासन। मैंने कहा जब बेचारे साईं जी खुद थे धरा पे, लोग उनको भोजन भी नहीं देते थे, गाली देते थे जब वो रास्ते से चलते थे, कोई पत्थर भी फेंक देता था, और आज देखो क्या हो रहा है। तो ईश्वरीय मार्ग ही ऐसा है, वो संसार से कुछ हटके होता है। संसारिक मार्ग पे चलने से तो मनुष्य का पतन ही हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, वो मार्ग कल्याणकारी नहीं है। और ईश्वरीय मार्ग उस मार्ग से थोड़ा हटकर होता है, इसलिए जब एक हटकर हम मार्ग पैदा करते हैं, जब हम एक नूतन मार्ग का निर्माण करते हैं, तो अनेक बाधाएं हमारे मार्ग में आती हैं। और सत्य का मार्ग थोड़ा कांटों से भरा मार्ग होता है, लेकिन जब दो चार लोग सत्य के कटीले मार्ग पे चल पड़ते हैं तो कांटे भी उनके पैर उतरे कुचल जाते हैं और एक साफ रास्ता बना देते हैं, जिन पर अनेक लोग फिर अग्रसर होते हैं। यही हर महान व्यक्ति के साथ हुआ है जिसने एक नूतन पथ दिया है। तो अब ये ईश्वरीय मार्ग, स्वयं भगवान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संसार की सामाजिक बंधनों से हटकर एक मार्ग, कुछ मर्यादाओं और बंधनों को लिए हुए एक मार्ग है, नो डाउट। समाज अनेक जगह इसको स्वीकार नहीं करेगा, परंतु अब युग परिवर्तन के लिए इन मर्यादाओं की परम आवश्यकता है।
बिल्कुल, तो फिर क्या किया जाए व्रता जी, वहाँ रहते हुए इन सब की पालन करने की कोशिश की जाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे ज्यादातर माताओं बहनों की बात आती है तो उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे बंधन रहते हैं, समाज के भी, परिवार का भी, पति का भी, अन्य रिश्तेदारों का भी। वो चाहते तो है कि बहुत सुंदर मार्ग है और शायद उन्होंने इस चीज का थोड़ा अनुभव भी किया है, लेकिन इन बंधनों में रहते हुए यहाँ संपूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर
पाते। पहले तो मैं यही कहूंगा कि जितना वो कर सकते हैं पहले अच्छे से अच्छा फॉलो करें, और जब मनुष्य के अंदर मनोबल बढ़ जाता है, जब ईश्वरीय शक्तियां बढ़ जाती हैं, उसके साथ गॉडली ब्लेसिंग्स हो जाती हैं, ईश्वरीय सहयोग हो जाता है, फिर वो अनेक चीजों को सहज ही पालन कर पाता है।
बिल्कुल, मतलब जहाँ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वहाँ रहते हुए पालन करें। फतेह जी, एक हमारे पास जो मेल है, चूंकि योग की हमारी चर्चा हो रही थी उस पे ले चलता हूँ आपको। ये गुरुदेव सिंह जी हैं अमृतसर से, ये कहते हैं योग में परमात्मा से कनेक्शन तो मेरा जुड़ जाता है, लेकिन सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति जो आत्मा के मूल गुण हैं उनका अनुभव नहीं होता। इनका गहरा अनुभव करने के लिए क्या विशेष अभ्यास किया
जाए? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, अनुभव केवल परमात्मा से कनेक्शन होने से नहीं होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हमने अपने घर में बिजली की लाइन बिछा दी, कनेक्शन भी जोड़ दिया, हमारा कनेक्शन पावर हाउस वालों ने आके खंभे पर चढ़कर जोड़ दिया है, अब हमारे घर में बिजली आ रही है, कनेक्शन जुड़ गया, लेकिन हमने पंखा नहीं लगाया, हमने फ्रिज नहीं लगाया, हमने कूलर नहीं रखा, तो फायदा नहीं होगा। ठीक ऐसे ही परमात्मा से कनेक्शन जुड़ने से करंट तो बहने लगा, लेकिन हम उसे डाइवर्ट करेंगे। अभी हमें इसके लिए बहुत सुंदर चिंतन की जरूरत है, हमें शांति की अनुभूति चाहिए, तो चिंतन करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा मूल स्वरूप ही शांत है, मैं इस देह से न्यारी हूँ। और जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें तो वो शांति के सागर हैं, उनकी शांति के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, मैं बहुत पीसफुल हूँ। कुछ देर, 2-3 मिनट तो शांत हो जाएगा चित्त, सुखों का अनुभव करना है। ठीक ऐसे ही मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मेरी मूल नेचर ही सुख है, सुख मेरा अपना स्वभाव है, और परमात्मा सुखों के सागर हैं, अब उनसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और चिंतन करें, मैं संपूर्ण सुखी हूँ, मैं सुखों के दाता की संतान हूँ, सुखी हूँ, ये देह अलग, मैं अलग, देह से स्वयं को डिटैच करने लगे हैं, बस सुख शांति पवित्रता धीरे धीरे परमात्म प्रेम शक्तियां उनका चिंतन अवश्य करना है, चिंतन से अनुभूति सहज होने लगेगी।
पता जी कई बार ऐसा होता है कि मैंने पहले भी शायद ये प्रश्न रखा था कि कईयों को ये चिंतन की जो कला है वो नहीं आती। एक दो या तीन लाइन ये सोच लिया कि हाँ मैं शांत स्वरूप हूँ या शांति के सागर की संतान हूँ, बस उसके आगे उनका चिंतन नहीं बढ़ता तो शायद वो अनुभूति की गहराई में नहीं उतर पाते। तो इस चिंतन को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि गहराई आए?
इसके लिए हमारी कमेंट्रीज बनी हुई हैं, शुरू में वो चला लिया जाए, उनमें बहुत अच्छा चिंतन है, उसको करने से बहुत अच्छी अनुभूति सहज होती रहेगी।
जी जी, मतलब कमेंट्रीज की हम मदद प्राप्त कर लें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, आज बहुत ही सुंदर प्रकाश हमें मिला है सत्य का, और उसकी ओर बढ़ने की भी आपने सुंदर प्रेरणा दी है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात हमारी शुरू हुई थी कि हम जिज्ञासा तो रखें लेकिन वाद विवाद में ना उलझें, क्योंकि अध्यात्म सचमुच एक ऐसा विषय है जो बहुत ही सूक्ष्म है, महीन है, और अनुभूति करने के लिए इसमें हमें खुद ही अपने कदम आगे बढ़ाने होते हैं। और जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि लाखों लोग जिस पथ पे चल के सुंदर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, जरूर हमें भी उस पथ पे आकर के उसका अनुभव अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो सत्य है वो तो सत्य है ही, यदि हम भी उसे टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके करीब तो हमें जरूर आना ही होगा। और चूंकि एक नया विषय है, एक नया मार्ग है, लेकिन सत्य मार्ग है, तो उसके लिए हमें जरूर प्रयास करना ही होगा। जैसे लाखों लोग अनुभव कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें भी सुंदर और श्रेष्ठ अनुभव होंगे ही होंगे। और वैसे भी सत्य, अध्यात्म या फिर योग एक ऐसा मार्ग है जो हमेशा हमें देता है। यहाँ पछतावे की कोई बात नहीं रहती, यहाँ धोखे की कोई बात नहीं रहती है। और जैसे एक डॉक्टर की बात चल रही थी कि डॉक्टर यदि दवा देता है अच्छा लगा हम आगे कंटिन्यू करते हैं, यदि अच्छा नहीं लगा तो फिर हम जिस मार्ग में है उस मार्ग में तो हम हैं ही, तो क्यों ना एक बार सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, सत्य के लिए इस राजयोग की दवा का भी इस्तेमाल करके देखें, ताकि जीवन हमारा खुशहाल होता चले और हम सत्य के बेहद नज़दीक पहुँचते जाएँ। कल पुनः इस चर्चा को भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।